ऐशिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन आयशा और मालविका की वजह से उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से उसकी ज़मानत भी नहीं हुई थी। अभिमन्यु लॉयर के साथ ऐशिका से मिलने के लिए आया था। वहां उसे ऐशिका की ख़राब तबीयत के बारे में पता चला तो वो बिना कुछ सोचे समझे ऐशिका के पास जाने लगा। इस बीच माधव ने उसे रोकने की कोशिश की तो अभिमन्यु ने उसकी गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। "प्लीज़ मिस्टर राजवंश, मेरी बात को समझिए," माधव अभिमन्यु को समझाने की कोशिश कर रहा था। बातें करते हुए माधव ने अभिमन्यु से गन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उसके पैर से थोड़ा दूर गोली चलाई जिससे माधव को उससे कुछ कदम दूर होना पड़ा। अभिमन्यु के अचानक शूट करने पर सब सकते में आ गए थे। माधव ने हल्की घबराहट के साथ कहा, "मिस्टर राजवंश, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप और मिस्टर राठौर इस शहर के जाने माने बड़े लोगों में आते हैं, ये करके आपकी इमेज ही खराब होगी." माधव ने अपने करियर में कई क्रिमिनल्स का सामना किया था, लेकिन उसने भी कभी उन्हें डराने के लिए गोली नहीं चलाई थी। उसे लगा नहीं था कि अभिमन्यु इस तरह सीधा हमला बोल देगा। दिशांक ने भी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु ये कर जाएगा। उसने यही प्लान किया था कि अगर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो उन्हें ऐशिका के ब्लड टेस्ट के लिए मजबूर करेगा या फिर वहां प्रोटेस्ट करेगा, पर अभिमन्यु ने डायरेक्ट शूट कर दिया था। माधव ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और नर्म आवाज में कहा, "मिस्टर राजवंश, अगर आप अभी मुझे वापस मेरी रिवॉल्वर दे देते हैं तो मैं इस मामले को यहीं जाने दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने पुलिस स्टेशन में फायर कर दिया था." अभिमन्यु पर माधव की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तेज और सर्द आवाज में बोला, "सॉरी इंस्पेक्टर, फिलहाल मुझे किसी की जान बचाने की ज्यादा जल्दी है। आपका लेक्चर नेक्स्ट टाइम सुनूंगा." अभिमन्यु ने पूरी तरह माधव की बातों को अनसुना कर दिया और फिर सिक्योरिटी कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, "रास्ते से साइड हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा." अभिमन्यु ने अपना हाथ बढ़ाकर इंस्पेक्टर को अपनी तरफ खींच लिया और उनकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा दी। उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद सभी कांस्टेबल साइड में हट गए। दिशांक भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। अभिमन्यु ऐशिका की फिक्र कर रहा है, ये देखकर खुश हो या फिर इस बात का दुख मनाए कि वो भी उसकी वजह से एक क्राइम में इन्वॉल्व होने जा रहा है। अभिमन्यु अंदर आया तो उसने देखा एक लेडी कांस्टेबल मालविका के पास खड़ी थी और ऐशिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, "मेरी बात का यकीन करो, मैं एनीमिक हूं, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो." क्रिस्टल वहां कंफ्यूज खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐशिका की बात पर यकीन करे या ना करे। तभी मालविका जमीन पर गिर गई और रोते हुए चिल्लाकर बोली, "मुझे भी खून की कमी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ." मालविका जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि क्रिस्टल कंफ्यूज हो जाए। कल रात उसके साथ रहने वाली दूसरी कैदियों ने भी यही किया था। क्रिस्टल वहां कंफ्यूज खड़ी थी, तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से पलटकर देखा तो अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर माधव को गन पॉइंट पर ले रखा था। अभिमन्यु माधव के साथ अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र सीधी ऐशिका पर गई। वो बहुत कमजोर लग रही थी। अभिमन्यु ने ऐशिका को हमेशा स्ट्रांग देखा था। वो हमेशा बहादुरी से खड़ी रहती थी और कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी। इससे अलग आज ऐशिका की हालत ऐसी थी कि वो खुद के पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। अभिमन्यु ने माधव की तरफ देखकर सख्ती से कहा, "मुझे नहीं पता था कि आप लोग एक सस्पेक्ट के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा इंस्पेक्टर." क्रिस्टल ने अभिमन्यु की बात सुनकर कड़क अंदाज में कहा, "हमने कुछ भी नहीं किया है, ये दोनों माँ बेटी हैं और इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। हम बस वही कर रहे हैं जो कानून के अंतर्गत आता है." वहीं दिशांक ने अंदर जाकर जब ऐशिका की हालत देखी तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने नम आंखों से कहा, "डोंट वरी मैम, हम आपकी हेल्प करने के लिए ही आए हैं, आपको कुछ नहीं होगा." इतना कहकर दिशांक ने क्रिस्टल की तरफ देखकर उसे डांटते हुए कहा, "आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की यहां मरने की कगार पर आ रही है और आपको अभी भी उसे टॉर्चर करना है। आप जैसे लोगों की वजह से ही बेगुनाह लोगों के साथ अन्याय होता है." दिशांक की बात सुनकर माधव ने हंसते हुए कहा, "कमाल की बात है मिस्टर राठौर, आज मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई लड़की पीरियड्स की वजह से मर गई है। अगर इसे सच में यहां से बाहर निकलना था तो कम से कम कोई अच्छी बीमारी तो चुनती जिस पर हमें यकीन होता." माधव ऐशिका का मजाक उड़ा रहा था, ये क्रिस्टल को अच्छा नहीं लगा। क्रिस्टल ने ऐशिका की तरफ देखकर कहा, "मिस सिंघानिया, अगर आपने किसी को नहीं मारा है तो आप इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हैं बाहर निकलने के लिए? क्या आपको हम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि हम सबूत ढूंढ पाएंगे? भले तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो, लेकिन तुम्हें इन सभी ऑफिसर पर यकीन करना होगा, ये अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार हैं." ऐशिका से बात करने के बाद क्रिस्टल ने अभिमन्यु से कहा, "मिस्टर राजवंश, आप जो भी कर रहे हैं ये सब आपको शोभा नहीं देता है। इंस्पेक्टर माधव सच में एक ईमानदार ऑफिसर है। अगर आप यहां ऐशिका को भगाने की नीयत से आए हैं तो अंजाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये लड़की बीमार होने का नाटक कर रही है."
क्रिस्टल बार बार इशिका को भला बुरा कह रही थी। इशिका ने गुस्से में चिढ़कर कहा, तुम सबको ये क्यों कह रही हो कि हमें तुम पर यकीन नहीं है? यहाँ किसी को यकीन नहीं है तो वो तुम हो। मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी तुम मान नहीं रही हो। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका से कहा, इनसे बहस करना बेकार है मिस सिंघानिया, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। क्या आप चल सकती हैं? हाँ, मैं चल सकती हूँ, इशिका ने जवाब दिया और खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे उठा तक नहीं जा रहा था। इशिका खुद से नहीं चल सकती थी। ये देखकर अभिमन्यु ने दिशांक से कहा, तुम्हें गन चलाना आता है? दिशांक ने हाँ में सिर हिलाया तो अभिमन्यु ने तुरंत गन उसके हाथ में देते हुए कहा, इंस्पेक्टर माधव की जिम्मेदारी अब तुम पर है। दिशांक हैरान रह गया। अभिमन्यु उसे एक के बाद एक झटका देते जा रहा था। कहां वो डॉक्टर मर्चेंट का मैनेजर होने के नाते इतना रिस्पेक्टेड पर्सन था और कहां अब अभिमन्यु ने उसे क्रिमिनल बना दिया था। अभिमन्यु इशिका के पास गया और उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी अभिमन्यु के चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था। वो दूसरी तरफ पलटा और सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। दिशांक ने अभी भी इंस्पेक्टर माधव को गन पॉइंट पर ले रखा था ताकि वो बाहर निकल सके। क्रिस्टल भी उन्हीं के साथ में आ गई। जल्द ही वो उस हॉस्पिटल पहुंच गए जहां इशिका का ट्रीटमेंट होता था। जिस तरह से अभिमन्यु इशिका को लेकर आया था, हॉस्पिटल में हंगामा मच गया था। रास्ते में इशिका बेहोश हो गई थी और उसे तुरंत ऑपरेट करने के लिए ले जाया जाने लगा। क्रिस्टल ने माधव की तरफ देखकर कहा, मैं अंदर जाती हूँ और इस बात का खास ख्याल रखूंगी कि ये लोग रिश्वत देकर रिपोर्ट के साथ छेड़खानी ना कर सके। हॉस्पिटल में माधव के गन पॉइंट पर होने पर और साथ में बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स और कांस्टेबल की वजह से हॉस्पिटल स्टाफ काफी प्रेशर में आ गया था। 10 मिनट के अंदर इशिका की रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट आते ही क्रिस्टल ने तुरंत उसे डॉक्टर से छीन लिया था। रिपोर्ट देखकर क्रिस्टल के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल थी लेकिन आयरन लेवल काफी ज्यादा गिर गया था। क्रिस्टल ने अब तक के करियर में इतना लो लेवल नहीं देखा था। वो बाहर माधव के पास रिपोर्ट बताने के लिए जाने लगी। वहीं बाहर का माहौल काफी गर्म था। दिशांक ने अभी भी माधव को गन पॉइंट पर ले रखा था। इस बीच उसने काफी बार दिशांक से रिवॉल्वर वापस लेने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा।
क्रिस्टल को उस तरफ आता देखकर माधव ने भौंय उठाकर कहा, मिस्टर दिशांक राठौर, रिपोर्ट आ गई है और इसी के साथ उस लड़की की सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको नहीं पता लेकिन हमारे स्नाइपर ने आपको टारगेट कर रखा है। जैसे ही उस लड़की का सच सामने आएगा आपको शूट कर दिया जाएगा। बेहतर है कि पहले ही आप पुलिस के आगे समर्पण कर दें। दिशांक में आईज रोल की और सिर हिलाकर कहा, बकवास बंद करो, मैं इरिटेट हो गया हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। उसने काफी बदतमीजी से बात की। क्रिस्टल तब तक उनके पास पहुंच चुकी थी। उसे देखते ही माधव ने जल्दी से कहा, डॉक्टर क्रिस्टल, आप इन सबको रिपोर्ट बता दीजिए ताकि इन सबका ड्रामा खत्म हो और हम उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर चले। इन्हें भी पता चले कि एनीमिया से कभी किसी की मौत नहीं हो सकती। हर किसी को क्रिस्टल के जवाब का इंतजार था। क्रिस्टल ने गहरी सांस लेकर कहा, ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर माधव, हमसे गलती हुई है। इशिका का आयरन लेवल सच में काफी गिर गया है और इस वक्त उसकी जान खतरे में है। क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? माधव ने चौंकते हुए पूछा। क्रिस्टल रिपोर्ट लेकर माधव के पास आई और उसे समझाने लगी। फीमेल ब्लड में आयरन का नॉर्मल लेवल 7.8 से 32.2 माइक्रोमोल पर लीटर होता है, जबकि इशिका का आयरन लेवल केवल 1 है, जिसका मतलब है कि उसे सच में आयरन की कमी है और उसकी जान खतरे में है। रिपोर्ट देखने के बाद माधव भी हैरान रह गया। तभी उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ लगी जो उन्हें बुरी तरह डांट रहा था। डॉक्टर ने वहां जाकर तेज आवाज में सख्ती से कहा, आखिर हो क्या रहा है? कल उसे इन्फ्यूजन मिल जाना चाहिए था और आज यहाँ लेकर आ रहे हो। मैं जान सकता हूँ कि इस एक दिन की देरी के पीछे का कारण क्या है? डॉक्टर की आवाज़ सुनकर सभी ने पलट कर देखा तो वहाँ एक लगभग 30 साल का डॉक्टर खड़ा था, जिसने बड़े से चश्मा लगा रखे थे। क्लीन शेव, लंबी हाइट वाला वो डॉक्टर उन सबको गुस्से में देख रहा था। उनका नाम रेयांश दीवान था। उन सबको डांटते हुए वो दिशांक के पास आया और सख्त आवाज़ में बोला, मिस्टर राठौर, उसे तो डेट्स याद नहीं रहती हैं लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं? दिशांक को गिल्ट फील हो रहा था। उसने क्रिस्टल की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है डॉक्टर रेयांश, मुझे याद था इस फॉरेंसिक डॉक्टर ने उसके बेहोश होने के बावजूद उसे इन्फ्यूजन के लिए नहीं आने दिया। बोलते हुए उसने क्रिस्टल की तरफ देखकर कहा, ये लगातार कहती रही कि वो ठीक है, शायद मिस सिंघानिया की जान चली जाती तभी ने समझ आता कि वो वाकई ठीक नहीं थी। क्रिस्टल ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्रिस्टल की नज़रें खिड़की से इशिका की तरफ गईं। उसे ट्रिप लग रही थी। इशिका को इस हाल में देखकर क्रिस्टल का रोने का मन कर रहा था। क्रिस्टल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने गुस्से में दीवार के मुक्का मारा और नम आंखों से कहा, हाँ सब मेरी गलती है। क्रिस्टल को रोता हुआ देखकर दिशांक को बुरा लग रहा था। वो समझ नहीं पाया था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने क्रिस्टल को और भी बुरा कहने से खुद को रोक लिया था। उसे अपना गुस्सा निकालना ही था तो दिशांक ने इंस्पेक्टर माधव से कहा, ये सब आपके स्टीरियोटाइप बिहेवियर की वजह से हुआ है। आपको यही लगता है कि सारे अमीर लोग सजा से बचने के लिए गलत तरीके से जमानत हासिल करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे भी कुछ एथिक्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। इंस्पेक्टर माधव का मुंह बन गया था। दिशांक पूरे रास्ते इंस्पेक्टर माधव को बहुत मुश्किल से गन पॉइंट पर ले रखा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं माधव ने उससे गन छीन ली
मिली तो वो पकड़ा जाएगा और इशिका की जान खतरे में आ जाएगी। सजा से बचने के लिए दिशांक ने फिर से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, गलती आपकी थी तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या अभी भी आपके स्नाइपर हमें शूट करेंगे? अगर ऐसा है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कम से कम इस सुकून के साथ तो मरेंगे कि हमारी वजह से एक मासूम लड़की की जान नहीं गई। दिशांक ने माधव को डांटते हुए उनकी गन वापस कर दी थी ताकि मामला और ना बिगड़े। माधव की भी गलती थी इसलिए वो उन्हें डांट नहीं पाया। उसने अपनी गलती मानते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। पहले की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई थी, बस इसी वजह से हम कन्फ्यूज हो गए। डॉक्टर क्रिस्टल ने खुद उनके सैंपल्स लिए थे। माधव ने फिर से पूरा मामला क्रिस्टल पर डांट दिया था लेकिन दिशांक ने उसे कुछ नहीं कहा। क्रिस्टल को रोता देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। क्रिस्टल ने दिशांक की तरफ देखकर उदास आवाज में कहा, इशिका बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसे हुआ क्या है? क्रिस्टल की बात सुनकर डॉक्टर रियांश ने सिर हिलाकर कहा, मैंने इसके बारे में बताया तो था, ये एक जेनेटिक सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसमें बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती है जिसकी वजह से इसे ड्रिप से आयरन इन्फ्यूजन लेना पड़ता है, लेकिन मैंने इस तरह की बीमारी के बारे में पहले नहीं सुना। और उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? क्रिस्टल ने थोड़ा हैरानी जताते हुए कहा। डॉक्टर रियांश ने अपना चश्मा सही किया और सख्ती से कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको दुनिया की सभी बीमारियों के बारे में पता हो। क्या वो बीमार हुई थी तब उसमें वीकनेस का एक भी सिम्टम नजर नहीं आया था जो आप उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आई? मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्रिस्टल ने नजरें झुकाकर कहा। माफी आपको मुझसे नहीं, उस शख्स से मांगनी चाहिए जो इस वक्त इतनी सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टर रियांश ने जवाब दिया। डॉक्टर ने क्रिस्टल को अंदर जाने की इजाजत दे दी थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वो इशिका से नजरें भी मिल सके। उसे वहीं पर खड़ा देखकर डॉक्टर रियांश ने सिर हिलाया और कमरे के अंदर गया। अभिमन्यु पहले से ही इशिका के पास खड़ा था। डॉक्टर रियांश के अंदर आते ही अभिमन्यु ने देखा वो काफी परेशान चेहरे के साथ इशिका को देख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उनके बीच सिर्फ एक डॉक्टर और पेशेंट का ही नहीं कुछ और भी रिश्ता था जो डॉक्टर रियांश की आंखों से साफ जाहिर हो रहा था।